نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل وسلم على نبينا محمد آمين يا رب العالمين. ہماری سیریز جو چل رہی ہے میدان محشر میں میری کہانی, وہاں پہ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اللہ اکبر پل صراط رکھا جا چکا ہے اور جہنم کے شولوں کی بھڑکتی بھی آوازیں آ رہی ہیں. یہ آوازیں ایسی ہیں جو دل کو لرزا دیں, اور ہر انسان سخت مصیبت میں ہے اس وقت. لوگوں کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں, دل کی دھڑکنیں اتنی تیز ہیں ایسے لگ رہا ہے سینہ توڑ کے دل باہر آ جائے گا. مگر آج یہاں بھاگ کے کہاں جا سکتے, پیچھے کچھ نہیں ہے, آگے ہی جانا ہے. اور اندھیرا ابھی تک بدستور ویسے ہی ہے, بس سب لوگ اپنی اپنی روشنی لیے کھڑے ہیں. جس نے یہ آخری مرحلہ طے کر لیا بس پھر وہ جنت میں ہی پہنچ کے رہے گا. میں جنت کا سوچتے ہی میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا, لیکن صراط کو دیکھ کے پھر دل بجھ گیا کہ اس پہ سے کیسے گزروں گی, یہ پھسلن والا ہے, گرنے کی جگہ ہے یہ. اگر گرے تو اور کہیں نہیں جائیں گے سوائے آگ کے. سب سے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور آپ کے پیچھے آپ کی امت ہے, اور امت میں سب سے آگے فقراء اور مہاجرین کی جماعت ہے. باقی انبیاء بھی یہاں موجود ہیں, لیکن ہر کوئی بالکل خاموش کھڑا ہے, سناٹا ہے, کوئی کچھ نہیں بول رہا. بولیں بھی کیسے, لوگوں کی زبانیں خوف نے بند کر دی. واقعی سچ فرمایا تھا میرے نبی نے کہ پل صراط پہ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا جب تک پار نہ اتر جائیں. انبیاء کی صرف اتنی آوازیں آ رہی ہیں, ربی سلم, ربی سلم, ربی سلم, اے رب سلامتی, اے رب سلامتی, اے رب سلامتی. جس کو اللہ ہی بچا لے وہی آج بچ سکتا ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, تم میں سے ہر ایک کو اس پہ سے گزرنا ہی گزرنا. اب امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمع ہو چکی ہے, میں بھی جا کے خاموشی سے کھڑی ہو گئی ہوں. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پل پہ سے گزریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کے پل کو پار کرنا شروع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپائے نور تھے, ان کا نور تو دور دور پھیلا ہوا, اتنا ان کو نور ملا تھا, دائیں طرف بھی آگے بھی, تو ان کا تو پتہ بھی نہیں چلا اور پل پار بھی پہنچ گئے. اور یہاں سے کوئی گروپ کی صورت میں نہیں گزرے گا, ہر ایک کو اکیلے اکیلے کراس کرنا ہوگا, کوئی دوسرے کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے نہیں جا سکتا. اب مہاجرین کی جماعت آگے بڑھی ہے, اب وہ ایک ایک کر کے گزر رہے ہیں, جو بڑی تیزی سے گزر گئے, ہوا کی رفتار سے گزر گئے. فقراء بھی اسی طرح گزر گئے. دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے میں ربی سلم کی دعائیں کیے جا رہے ہیں. اب عام لوگوں نے گزرنا شروع کر دیا. ایک آدمی تیز تیز دوڑتا ہوا گزر گیا. ہر ایک کی جتنی روشنی ہے اس کے مطابق اس کی رفتار ہے, اس کے مطابق سپیڈ ہے. میرے پاس تو بہت زیادہ روشنی نہیں ہے, میرا کیا ہوگا. اب وہ لوگ جا رہے ہیں جن کے پاس کم کم روشنی ہے, سبھی سخت پریشان ہیں. دنیا میں ابو میسرا رحمت اللہ علیہ جب اپنے بستر پہ جانتے تھے تو کہا کرتے تھے, اے کاش میری ماں مجھے نہ جنتی, رونے لگتے. ان سے کہا جاتا تھا, ابو میسرا آپ کیوں روتے ہیں؟ فرماتے تھے, مجھے یہ تو پتا ہے کہ جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے, لیکن یہ نہیں پتا نجات ہوگی یا نہیں. واقعی یہاں پہ کسی کو نہیں پتا اس کی نجات ہوگی یا نہیں. और मैं तो दुनिया में हाइट से बहुत डरती थी। कहाँ ऐसा पुल जो इतना बारीक है, और नीचे पानी का समंदर नहीं है, आग है। एक आदमी आगे बढ़ा है, इसका जो हाल हुआ है उसका हाल देख के तो सबकी तबीयत खराब हो गई है। वो जब पुल क्रॉस करने लगा, आधे रास्ते पे पहुंच के उसका नूर बुझ गया, और बुझते ही उसका पैर फिसल गया और वो जहन्नुम में जा पड़ा। उसकी चीखों ने तो सबके दिल दहला दिए। मुझे जहन्नुम के फरिश्ते की आवाज आ रही है, वो कह रहा है, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? क्या तुम्हें किसी ने नहीं इस अंजाम से खबरदार किया था? अलम यातिकुम नजीर, वो हर एक से यही सवाल कर रहा है। जब से लोग जहन्नुम में जा रहे हैं उस वक्त से वो ये कह रहा है, वो बदबख्तो, किसी ने नहीं तुम्हें बताया था? क्यों तुम यहाँ पहुंच गए? तुम्हें नहीं पता था इस दिन के बारे में? क्या तुम्हारे ऊपर तुम्हारे रब की आयात नहीं पढ़ी जाती थी? क्या तुम्हें इस दिन की मुलाकात का यकीन नहीं था? वो कह रहे हैं, हाँ बताया तो गया था, मगर हमारी बदबख्ती हम पे गालिब आ गई। दुनिया में कहाँ कोई सुना करता था? दुनिया में तो जहन पे इतना कुछ और छाया रहता था कि इस दिन का तो किसी को होश ही नहीं था। फुल सिरात की कोई बात ही नहीं करता था, सब इग्नोर कर देते थे, सुनते थे तो बुला देते थे। इतनी लापरवाही के साथ जीते थे, कहते अच्छा देखा जाएगा, जब होगा कुछ कर लेंगे, हफ्सलम हमारी शिफात कर देंगे। मगर यहाँ पे तो जो नीचे गिर रहा है, अभी तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी शिफात नहीं की। हिसाब किताब पे अभी शिफात नहीं हुई, मीजान पे लोग खड़े थे वहां पे शिफात नहीं हुई, आमाल नामे जब बांटे गए वहां पे शिफात नहीं हुई। हर एक को अपना अपना हिसाब भुगतना पड़ा है। मगर दुनिया में कैसे खुद को तसल्लियां दे के बैठे रहते थे। कुरान की तरफ बुलाया जाता था तो कहा करते थे कि हमारे पास कहाँ टाइम है, नौजवान म्यूजिक में और मस्ती में और इन चीजों में लगे रहते थे, और जो जरा उधेड़ उम्र हो जाते थे उनके मसले ही कभी खत्म नहीं होते थे। इसी में जिंदगी खत्म हो गई। जिंदगी तो किसी का इंतजार नहीं करती। जब से लोगों ने इस आदमी का हाल देखा है ना, इसको जहन्नुम में गिरते देखा है, उस वक्त से नेक लोग दुआएं करने लग गए हैं, रब्बना आत्मिम लाना नूराना वग़फिर लाना इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। ए हमारे रब, हमारे नूर को मुकम्मल कर देना, हमारी बख्शिश कर देना, बेशक तू हर चीज पर कादिर। ये अल्लाह ही है जो आज बचाएगा तो कोई बच सकता? मुझे याद आ गया सूरह तहरीम, जब मैंने दुनिया में याद की थी उसमें ये दुआ थी कि लोग ये दुआ करेंगे। वाकई अल्लाह की बातें कितनी सच्ची थी। आज वैसा वैसा ही हो रहा है जैसे हमें कुरान में बताया गया था, लेकिन कुरान को कितने लोग जानते थे? एक तरफ लोग यहाँ ये दुआएं कर रहे हैं, दूसरी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। वो पार खड़े हैं, अब एक और शख्स गुजरने लगा, वो इतना खौफजदा है कि पुल पे पैर रखने से भी डर रहा है। वो खड़ा होके भी नहीं चल रहा, बैठ गया और खुद को घसीट घसीट के लेके जा रहा है। इतने में रहम आगे बढ़ा, रहम जो एक कुंडे की सूरत में पुल पे खड़ा हुआ था। ये रहम क्या है? सिला रहमी। उसने इसको पकड़ लिया और रहम कह रहा है कि तूने मुझे काटा था, आज मैं इसका बदला लूंगा। आदमी चीख रहा है और इस कुंडे ने इसको पकड़ के जहन्नुम में गिरा दिया। उफ, ये दुनिया में जो रिश्तेदारियां हैं ये कितना बड़ा मरहला था, कितना बड़ा मसला था, इसको काटना कितना बड़ा जुर्म था, ये मुझे पहले नहीं था पता। ये नहीं पता था कि पुल सिरात पे इसको भुगतना पड़ेगा। ये हमें कहाँ कोई बताता था? हमारे जानने वाले ही बहुत सारे लोग, भाई भाई से बात नहीं करता था, बहन भाई आपस में लड़े हुए थे, माँ बेटी आपस के अंदर उलझे हुए थे, चचा भतीजे आपस में नाराज थे, खाला भांजी की बातचीत बंद थी, सकी बहनें आपस में कटौती हुई थी। जितना ज्यादा रिश्ता करीबी था उतने ही उसके हकूक ज्यादा थे। सबसे ज्यादा वालदेन के हकूक थे, फिर बहन भाइयों के थे, फिर मामू खाला चचा पुपी, इनके हकूक थे। लेकिन दुनिया में तो हम यही सोचते थे, जिससे मेरा जी चाहेगा बोलूंगी, जिससे नहीं जी चाहेगा नहीं बोलूंगी, जो मुझे नहीं लिफ्ट कराता मैं क्यों उसको उससे बात करूं, जो मुझे बुरा जवाब देता है मैं क्यों उससे बोलूं। दुनिया में सोचते थे मैं क्यों आगे बढ़ूं, मैं क्यों माफी मांगू, वो मुझे मनाए ना, वो सुलह कर लेना, मैं क्यों करूं, तोड़ा तो इसने है। अल्लाह अकबर, अपनी अना को छोटा नहीं कर सके दुनिया में, चाहे रिश्ते इन्होंने काट दिए मगर अपनी अना को नहीं झुकने दिया। और आज देखो कैसे ये जुर्म जहन्नुम तक ले गया। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में हमें बता दिया था कि अल्लाह ताला ने जब रहम को पैदा किया था तो इसने शिकायत की थी कि अल्लाह लोग मुझे तोड़ेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया था जो तुझे तोड़ेगा मैं उसे तोड़ूंगा, यानी मैं उसको अपने से दूर कर दूंगा, और जो तुझे मिलाएगा मैं उसको मिलाऊंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो दुनिया में हमें बता दिया था कि कतई रहमी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। हम बाहर वालों से अच्छा मामला कर लेते थे मगर रिश्ते हमसे निभाए नहीं जाते थे। ये शख्स दुनिया में अगर रिश्तों को ना तोड़ता तो आज इसका ये हाल ना होता। जिसके कहने पे भी इसने रिश्तों को काटा, आज वो तो कहीं भी नजर नहीं आ रहे। क्या दुनिया में रिश्तेदारों की तरफ से बेइज्जती सहना आसान था, या यहाँ पुल सिरात से गिर के जहन्नम में जाना आसान है? चॉइस तो इंसान की अपनी ही होती है। पुल सिरात तक कताए रहनी पहुंच गई है, आखिर तक कताए रहनी ने पकड़ लिया। मैंने ठंडी आ भरी आए, दुनिया में कई कामों को हम कितना आसान समझते थे, कितना इजी लेते थे, और यहाँ पे किस कदर सीरियस है ये नहीं जानते थे। अब एक और औरत आई है, वो बेहद खौफजदा है, उसने पुल पे कदम रखा लेकिन इतनी तेजी से गुजर गई है, ऐसे लग रहा है घोड़े पे सवार है। मुझे आज ही बड़ी खुशकिस्मत लग रही है। फिर हमारे एरिया का काउंसलर आया, अब इसकी बारी है। वो पुल पे चढ़ा है, बड़ी एहतियात से आगे जमा जमा के कदम रख रहा है। अभी वो कुछ ही फासले पर गया था कि अमानत के हुक ने इसको पकड़ लिए और जहन्नुम में गिरा दिए। इसकी आवाजें दिल दहला देने वाली है। यहाँ तो अमानत भी खड़ी है जिन्होंने अमानतें अदा नहीं की थी, लोगों की जिम्मेदारियां भी अमानत थी, लोगों के हकूक भी अमानत थे। ये सिफारिशों पे काम किया करता था। दुनिया में दयानतदारी भी अमानत थी, लोगों के राज भी अमानत थे। हम तो सिर्फ ये समझा करते थे कि शायद कोई आपके पास कोई चीज रखवाए तो वही अमानत होती। अब यहाँ पता चलता रहा है कि नहीं, हकूमत के ओहदे भी अमानत थे, नाप तोल भी अमानत था, वजू भी अमानत था, मजलिसों में जो होने वाली बातें वो भी अमानत थी, और ये हमारे आजा भी अमानत थे जो अल्लाह ने दिए थे। इनसे भी सही काम लेना ये अमानतदारी था। लेकिन हमने अमानत को कितना हल्का समझा था। दुनिया कितनी करप्शन थी हमारे मुल्क में, कितनी बदियानती थी, कितनी जाली डिग्रियां थी, कितना हराम माल लोग कमाते थे, बड़ी बड़ी चीजें हड़प कर लिया करते थे और किसी को एहसास तक नहीं था। ये अमानत यहां भी पहुंच गई। ओ दुनिया तो बहुत दूर पीछे रह गई, उसमें की हुई कमाइयां भी बहुत दूर पीछे रह गई। लाखों करोड़ों साल शायद गुजर चुके हैं, लेकिन आज ये अमानत यहां पहुंच गई है। चाहे कौमी अमानतें या आवाम की चीजें या जॉब में दफ्तर की चीजें, लोग इसको कितना जाती मिल्कियत की तरह समझते थे। मुझे उस वक्त उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु याद आ गए कि जब बहरीन से माले गनीमत में मुश्को अंबर आया था और उसको तोलना था ताकि तकसीम कर सके, तो किसी आदमी की तलाश कर रहे थे। अमीरुल मोमिनीन की बीवी ने अर्ज किया कि मैं ये काम कर देती हूँ, तो उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, नहीं, मुझे डर है मुश्क तुम्हारी उंगलियों से लग जाएगा जिसको तुम अपने बदन पे मल लोगी, और कयामत के दिन इसका जवाब दे मैं हूंगा। अल्लाह हू अकबर, वो कितनी एहतियात करते थे, लेकिन जिस जमाने में मैं पैदा हुई थी उस जमाने में तो किसी को परवाह ही नहीं थी कि हलाल क्या और हराम क्या है। करप्शन की इतनी इंतहा थी, लोग दौलत की आग अपने लिए इकट्ठी करने की दौड़ में लगे हुए थे। वो नहीं जानते थे ये माल नहीं है, ये आग है। इस दौड़ में किसी को फिक्र नहीं हुआ करती थी कि अगर हम दुनिया में नहीं पकड़े गए तो हशर में अल्लाह के अजाब से हमें कौन बचाएगा। बाल से बारीक और तलवार से तेज, पुल सिरात से ये खयानत, ये लूट मार, ये बददियानती कैसे गुजरने देगी। ये तो आंकड़े हैं यहाँ पे, ये तो हुक्स हैं, ये पकड़ लेंगे। किसी को कहाँ ये अंदाजा था कि जब ये आंकड़ों की सूरत में हमें उलझा के जहन्नुम में डालेंगे तो वहां कौन हमें बचाएगा। आज पता चल रहा है जो दुनिया में जितना ज्यादा रब का इताअत गुजार हुआ करता था, जितना ज्यादा रब का वफादार था, उतनी ही आसानी से आज पुल सिरात से गुजर रहा है। जो जिंदगी के पुल सिरात पे पार हो गया था वो आखरत के पुल सिरात पे भी कामयाब हो रहा है। और दुनिया के पुल सिरात क्या था? दीन पे चलना, वो भी तो एक पुल सिरात होता था, जो वहां उस पुल सिरात से गुजरा उसके लिए आसानियां। एक शख्स आया, उसके कुर्बानी के जानवर को लाया गया कि आप इस पे सवार हो जाएं। लेकिन बाकी लोगों ने भी तो कुर्बानियां की होंगी, उनके जानवर कहाँ हैं? इसको ही क्यों जानवर मिल रहा है? हाँ, हो सकता है उनकी कुर्बानियां कबूल ही ना हुई हो, इसलिए कि कहीं किसी ने कुर्बानी सही से अदाई ना की हो, जिस जानवर की करनी थी वैसे ना की हो, किसी की नीयत दिखावा हो गई हो इसलिए उसकी कुर्बानी ना कबूल हुई हो, या हो सकता है किसी ने हराम माल से कुर्बानी दी हो, तभी यहां उसको उसकी कुर्बानी का जानवर नहीं मिल रहा। हमारे यहां तो कुर्बानियां इसलिए दी जाती थी ताकि बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स को राने भिजवाई जाए, कल को वो हमारे काम आएंगे। इसलिए कुर्बानी दी जाती थी कि लोग कहें, देखो इसने इतने लाख का जानवर लिया है, और लोग कहा करते थे फखर से, हमने इतने बकरे कुर्बान किए हैं। और बाज कुर्बानी की जरूरत ही महसूस नहीं करते थे, वो कहते थे गरीबों को पैसे दे दो, कुर्बानी करने की क्या जरूरत है। लोगों को ये कहाँ पता था कि ये जानवर यहां सवारियां बनेंगे? ये पता होता तो दुनिया में शौक से सवार के खुशी से मोहब्बत से इस नियत से कुर्बानी करते। अब इस आदमी का बड़ा सा बैल आ गया, वो इस पे बैठा है, और दौड़ाता हुआ ले गया। यहाँ पे अजीब ही समा है, बास लोग पुल पे चंद कदम ही चलते हैं और जहन्नुम में गिर जाते हैं। बास थोड़ा फासला तय करते हैं, दरमियान में पहुंचते हैं और फिर किसी हुक्म में फंस जाते हैं और जहन्नुम में गिर जाते हैं। पर सबसे ज्यादा हसरत तो मुझे उन पे हो रही है कि कुछ ऐसे भी हैं जो पुल के आखिर तक पहुंच गए। पुल बिल्कुल खत्म होने वाला था और वो वहां ऐसे फिसले कि जहन्नुम में जा गिरे। यहाँ कोई कितना बड़ा स्टंटमैन हो या हीरो हो, कोई सुपरमैन हो, उसके टैलेंट से कोई पार नहीं हो रहा। सरासर रब की रहमत है जिसकी वजह से लोग पुल पार कर पा रहे हैं। यहाँ दुनिया के बड़े बड़े लोग खड़े हुए, वो लोग जिनकी गाड़ियां, जिनके घर, बड़ी बड़ी जायदादें, बैंक बैलेंस देख के हम मरहूब होया करते थे, जिनको देख के लोग वाह वाह किया करते थे, आज देखो कैसे कांप रहे हैं, आज देखो कैसे सहमे खड़े हैं। सतली सच फरमाते थे कि लोग सो रहे हैं, जब मरेंगे तो तब जागेंगे। वाकई हम तो आज जागे, दुनिया में तो हम सोए ही रहे। मंजिल सामने है, जन्नत सामने है, इसके बावजूद कितनी दूर लग रही है। आज एक का फैसला हो रहा है और बाकी सब खड़े देख रहे हैं। तमाशाई बने हुए हैं। आज कोई फायर फाइटर यहाँ पे नहीं है जो इनको इस फायर से बचा ले। आज यहाँ पे कोई एम्बुलेंस नहीं है जो जलते हुए लोगों को मेडिकल एड देते। यहाँ पे कोई 911 नहीं है जो इस इमरजेंसी से लोगों को निकाल दे। लोगों की चीखें जहन्नुम से बुलंद हो रही हैं, लेकिन कोई इनको निकालने वाला नहीं है। जहन्नुम ऐसी है जैसे कोई आग का कुआं हो। मैं सोच रही हूँ हम दुनिया में कितने आराम से चलते फिरते हंसते खेलते रहते थे, कैसे हम फन कर सकते थे? हमें क्या ये होश नहीं था कि हमने यहाँ से गुजरना होगा? हम कैसे खुद को सेफ समझ के बैठे हुए थे? जब तक यहाँ से कोई पार नहीं हो जाता, वो कैसे महफूज है? हम कैसे भूल सकते थे इस वक्त को जिसका हमारा रब हमें बता चुका था? रातों को हम कैसे पूरी पूरी रात सो जाया करते थे जबकि जहन्नुम पर से गुजरने का हमें इल्म था? यहाँ पे कितने ही नाजुक चेहरे नजर आ रहे हैं। दुनिया में बहुत नाजुक होते थे, बड़े कीमती होते थे। आज इनके चेहरों पे दौलत का जर्रा बराबर भी निशान नजर नहीं आ रहा, जर्रा बराबर भी असर नजर नहीं आ रहा। ये हशर के दिन की हजारों साल की कहानी बता रहे हैं। ख्वारी की दास्तान उनके चेहरों पे लिखी हुई नजर आ रही है। सबके चेहरे कैसे उतरे हैं और आंखों में कितना शदीद खौफ और वहशत है। हाय, मेरा जी चाह रहा है किसी तरह वक्त का पहिया वापस कर दूं, दुनिया में लौट जाऊं और चीख चीख के सबसे कहूं कि खुदा के लिए इस दिन की तैयारी कर लो। काश मैं दुनिया में वापस जाऊं तो रातों को उठ उठ के रोऊं उस वक्त तक, अल्लाह से पनाह मांगती रहूं जब तक अल्लाह मुझसे राजी ना हो जाए। कितने खुशकिस्मत हैं वो लोग जो आज हवा की तेजी से गुजर गए। काश मैं एक दफा दुनिया में चली जाऊं तो इतनी मेहनत करूं, इतनी मेहनत करूं कि मैं भी इसी तरह तेजी से बाहर चली जाऊं और इस सख्त कर्म से निजात पा लूं जिसमें मैं इस वक्त मुब्तिला हूं। मैं दुनिया के माल और चीजों के लिए दोस्तों से रेस लगाया करती थी, अब मैं एक दफा दुनिया में चली जाऊं ना तो नेकियों में रेस लगाऊंगी। मुझे अगर इसका अंदाजा होता तो कभी दुनिया की चीजों को कामयाबी समझ पे उनके खुश ना होते, कभी दुनिया की मुसीबतों को सबसे बड़ा गम समझ के उन पे ना रोती। हाय दुनिया के मिलने पे हंसने वालों और इसकी महरूमी पे रोने वालों, हंसना है तो जन्नत की उम्मीद पे हंसो और रोना है तो जहन्नम के अंदेशे में रो। मरना था तो इस दिन के लिए मरते और जीना था तो इस दिन के लिए जीते। मेरी आंखों से फिर आंसू बहने लगे, इस दफा ये खुशी के आंसू नहीं है बल्कि इस एहसास के आंसू हैं कि जितनी मेहनत को मैं दुनिया में बहुत ज्यादा समझती थी वो भी आज के दिन के लिए थोड़ी थी। मैंने जिन नेकियों को काफी समझा था वो आज के दिन के लिए बहुत कम थी। आज किसी तरह गुजरा वक्त वापस पलट आए तो मैं और कोशिश कर सकती हूँ, मैं और कर लूंगी कोशिश, किसी तरह वापस चली जाऊं। जैसे जैसे मैं सोच रही हूँ मेरा दिल तड़प रहा है। मैंने बड़ी बेबसी से पुल से रात की तरफ देखा, फिर मुझे मेरे रब की रहमत याद आ गई। मेरी आखिरी पनाह का तो उसका दामने रहमत ही है जहां से कभी मैं ना मुराद नहीं लौटी। फकीर बंदी की सारी उम्मीद कल भी और आज भी रब रहीम है। ये सोच के दिल को जरा सा करार मिल गया, रब तो है ना। बड़ा मुश्किल वक्त है। अब मैंने देखा मेरे अब्बू आगे बढ़े हैं, बहुत एहतियात से उन्होंने पहला कदम रखा। सब लोग चुपचाप देख रहे हैं, किसी में आवाज निकालने की भी ताकत नहीं है। मेरे अब्बू आहिस्ता आहिस्ता कदम आगे रख रहे हैं, एकदम एक आंकड़े में उलझ गए मगर शुक्र है बच गए, नीचे नहीं गिरे। अलबत्ता खून बहुत बहने लगा मगर ऐसे लग रहा है खून की उनको कोई परवाह नहीं है, उन्होंने तवज्जो भी नहीं की, बस एक ही तरफ देखे जा रहे हैं। पुल के आखिर पे उनको शायद एक ही धुन सवार है, किस तरह पुल पार कर लूं। वो आगे बढ़े, एक और हो गया जिसने उनको गिरा दिए। इस दफा इनकी एक टांग लटक रही है पुल से, आग इनके अतराफ को छू रही है, मगर वो जल्दी से उठ के खड़े हो गए। शदीद खौफ इनकी आंखों में नजर आ रहा है। जरा आगे गए तो फिर गिर गए, या अल्लाह ये कहीं जहन्नुम में ना गिर जाए। अब वो शदीद जख्मी हो गए मगर चलते जा रहे। उनके अंधेरे में जो मस्जिद की तरफ कदम जाते थे वो कदम आज इनको रोशनी दे रहे। जब तक ये पुल सिरात से पार ना हो जाए उस वक्त तक बचत नहीं है। वो आखिर तक पहुंच गए लेकिन अभी भी खतरा, गिरना पड़े। को फिर एक ठोकर लगी है, मगर इस दफा संभल गए। पुल थोड़ा सा ही बाकी रह गया। आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। शुक्र है कि उन्होंने पुल पार कर लिया। मुझे पुल की दूसरी तरफ खड़े हुए लोग इतने खुशकिस्मत लग रहे हैं जैसे दुनिया के सबसे ज्यादा खुशकिस्मत लोग यही थे। अब्बा जान वहां पहुंच के कह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, उस अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझ पे ये एहसान फरमाया जो किसी दूसरे पर नहीं फरमाया, जिसने मुझे आग से निजात दे दी, हालांकि मैं उसे देख चुका था क्योंकि अभी गिरने ही तो वाले थे। हाँ वाकई शुक्र है कि पहुंच गए। कोई बात नहीं, अगर चोटें लगी भी तो, अगर खून बहा भी तो, जो वहां पहुंच गया पार उसके लिए चोटें भी मरहम है। अब मेरी बारी है पुल सिरात पार करने की। मैंने एक दफा कांपती नजरों से दोबारा अपने नूर की तरफ देखा। मेरा नूर तो है ना मेरे साथ। बोझल कदमों से मैं पुल के सामने आई। पुल दूर तक मुझे दिखाई देने लगा। इसके आंकड़े ऐसे मुझे लग रहे थे जैसे कोई सांप हो जो अभी निगल के जहन्नुम में गिरा देगा। उफ, लोग दुनिया में कैसे कह सकते थे कि कोई बात नहीं, जहन्नुम में कुछ दिन चले भी गए तो आखिर तो जन्नत में चले जाएंगे। इस पर से तो गुजरना भी असाब है, तो जो इसके अंदर हो उसके असाब का अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है। इसके सियाह शोले ऊपर को लपक रहे हैं, जैसे अभी पकड़ लेंगे जो इससे गुजरेगा। मेरे पास कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि मैं इसको पार करूं। अगर मैं दुनिया में होती ना, भाग के वापस चली जाती अपने घर। यहां मेरा कोई घर नहीं है, यहां मेरा कोई नहीं है। मेरी टांगे तो पहले ही कांप रही हैं, मैं कैसे गुजरूंगी इस पे से। मैंने आहिस्ता आहिस्ता कदम आगे बढ़ाए। मैं थोड़ा चल चल सकती हूँ, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे चल लूंगी अल्लाह की मदद से। मेरा दिल चाह रहा है ये मरहला जल्दी से गुजर जाए, पलक झपकने पे गुजर जाए। एक एक कदम ऐसे लग रहा है एक सदी गुजर रही है। एक एक कदम कितना भारी लग रहा है। उस दुनिया में तो ऐसी अजियत कभी नहीं सही थी। मैंने बीमारी के दिन भी देखे थे, लेकिन दुनिया की तो कोई मुसीबत इसके मुकाबले में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मैं वाकई पलक झपकने में पार हो सकती थी, मगर इसके लिए और ज्यादा नेकियां मुझे लानी चाहिए थी। मेरे पास कहां इतनी नेकियां हैं, मैं तो मिली जुली जिंदगी गुजारती रही। मैंने अब जरा तेज कदम उठाने शुरू किए कि मेरा पैर एक आंकड़े में अटक गया और मैं स्लिप हो गई। शुक्र है उनसे नीचे गुजरने से, गिरने से बच गई, मगर आग मुझे महसूस हो रही है। किसी ने जैसे मुझे सहारा देके खड़ा कर दिया। लगता है किसी फरिश्ते ने खड़ा कर दिया अल्लाह के हुक्म से। मैं संभल गई हूं, मुझे बस खुद को इन हुक से संभाल के गुजरना। जैसे जैसे मैं पुल पे आगे बढ़ रही हूँ, आग की तपिश मुझे और ज्यादा महसूस होने लगी। मैंने जरा तेज कदम उठाने शुरू किए। ये पुल कितना स्लिपरी है, कितनी फिसलन है इस पे। एकदम मेरा कदम फिसला। अब की बार तो लगता है कि मैं गिर गई, मेरे हाथ छिल गए सहारा लेते हुए। मुझे ऐसे महसूस हो रहा है जैसे मेरा कलेजा मेरे हलक में आ गया और मेरा दिल सीने में नहीं है धड़क रहा, मेरे मुंह में धड़क रहा है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, मुझे इतना रोना आ रहा है, मगर खौफ के मारे मेरे आंसू भी बंद हो गए। बदबू, गलाजत, दर्दनाक चीखें और आग ही आग है जिसके ऊपर से मैं गुजर रही, और इंतहाई खौफनाक शक्लों वाले फरिश्ते गुर्ज लिए खड़े नजर आ रहे हैं। मैंने एक नजर नीचे डाली तो वहां का हैबतनाक मंजर देख के मैं कांप उठी। ऐसे लग रहा जैसे कोई आग का कुआं है, इसमें तो कोई पत्थर भी फेंके 70 साल तक गिरता रहेगा, तब जाके शायद उसकी तह में पहुंचेगा। ये छोटी मोटी चीज नहीं है, ये एक बला है, बहुत बड़ी बला, शदीद सिया है, जो लोग दुनिया की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, जो बड़ी नेमतों में पला करते थे, वो आज जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त करेंगे? जो दुनिया में इतने नाजुक जिस्म रखते थे, दुनिया की आसाइशों में रहते थे, वो आज इसको कैसे बर्दाश्त करेंगे? वो जिसके डर से अंबिया भी कांप रहे हैं आज, जिसको देख के वो भी रब्बी सल्लिम कह रहे हैं, उसको बाकी लोग कैसे बर्दाश्त कर सकते? अगर मुझे दुनिया में अंदाजा होता ना कि ये क्या चीज है, तो मैं सारी दुनिया छोड़ के दीवाना वार अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार कहती रहती। आज आसमान की भी ताकत होती तो रो पड़ता लोगों का हाल देख के, और जमीन मौजूद होती तो मातम करती ऐसे लोगों के हालात पे। मेरा जिस्म कांप रहा था, अब नीचे देखने के बाद मेरी हिम्मत नहीं थी कि दोबारा नीचे नजर करूं। मैंने और मजबूती से अपने कदम रखने शुरू कर दिए, अब फासला आगे थोड़ा ही रह गया था। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई अब पुल से उतर रही हूँ। यहाँ वो सब लोग खड़े हैं जो पार आ चुके हैं। जब से हशर का मैदान, हशर का ये वक्त शुरू है, उस वक्त से अब तक पहली दफा ऐसा लग रहा है मेरे दिल को करार आ गया, सुकून आ गया। मैं इतना रो रही हूँ, अब ये रोना इस बात पे कि शुक्र है मैं पार आ गई, शुक्र है अल्लाह ने मुझे इससे बचा लिया। मेरे भी जुबान में वही अल्फाज बेख्तियार आ गए जो मैंने अपने वालिद की जुबान से सुने थे, कि अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझ पे एहसान किया जो किसी दूसरे पे नहीं किया, तूने मुझे आग से निजात दे दी हालांकि मैं उसमें गिरने ही वाली थी। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अब समझ आ रही है क्यों हमें यहाँ से गुजारा गया। वाकई आज जो बच के इस पुल से राहत से गुजर गया और जन्नत में चला गया, वो अब बड़ी अच्छी तरह जान लेगा कि उसके रब ने उसको कितनी बड़ी आफत से निजात दे के जन्नत में दाखिल किया। अगर एक पल के लिए भी वो जहन्नुम में गिर जाता तो उसके साथ क्या होता? आज जो शुक्र गुजारी उसको ये पुल पार करके महसूस होगी, वो कभी सीधे जन्नत में चले जाने से महसूस नहीं हो सकती थी। कैसे वरना पता चलता कि रब ने किस अजाब से निजात दी है उसको, कितना बड़ा एहसान किया उस पे। अब मेरी कुछ जान में जान आने लगी। हम सब लोग यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में ठहरे रहेंगे जब तक सारे उम्मती पुल पार करके इधर ना पहुंच जाए। यहाँ उनमें से कहीं नीचे ना गिर जाए। आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस वक्त उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। लोग गुजर के आते जा रहे हैं, कुछ नीचे गिरते जा रहे हैं, और हम इंतजार में अभी खड़े हैं। इसके बाद क्या होता है, इंशाल्लाह कल इस पे बात करेंगे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।